सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोता, स्वागत है आप इन कार्यक्रम परिक्रमा में, यानी वो कार्यक्रम जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए आज क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम याद करेंगे उन खास व्यक्तित्वों को भी जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। आज कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
Hello, Sir Firozi. Hello and good afternoon to all our listeners. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Sir Firozi. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi says conspirators behind Red Fort blast in Delhi will not be spared and all those responsible will be brought to justice. President Draupadi Murmu calls upon Union Home Minister Amit Shah on phone from Angola regarding details of yesterday's blast.
Gṛh Mantri ne Delhi visphot ke baad suraksha sthiti ki samiksha ki.
Home Ministry hands over probe into the incident to National Investigation Agency NIA. Over 60% voter turnout recorded so far in the second and final phase of assembly elections in Bihar.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आतंकवाद के वित्त पोषण को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने का आग्रह किया।
दिल्ली एयर क्वालिटी वर्सन्स टू सीवियर कैटेगरी, गवर्नमेंट इम्पोजेस ग्रैब 3, स्कूल्स अप टू क्लास 5 टू फंक्शन इन ऑनलाइन मोड।
और हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सोलोय को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Education Day.
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे।
Yes, and if you fail, never give up, because FAIL means first attempt in learning. End is not the end. In fact, END means effort never dies. Well, we are here to talk about something that shapes not only our future, but the future of our entire nation, education. Education is more than just books and exams. It's the foundation on which a country builds its progress, its innovation, and its identity. Think about it, every great nation in the world has one thing in common, an educated population. Education gives people the knowledge, skills, and the confidence to contribute meaningfully to society.
बिल्कुल अभिषेक, और शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का हस्तांतरण किया जाता है, जिससे व्यक्ति का समाज से जुड़ाव और संस्कृति की निरंतरता बनी रहती है। शिक्षा आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और अवसर पैदा करती है। जब नागरिक शिक्षित होते हैं तो वो अपने और अपने समुदाय के लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये उन दरवाजों को खोलती है जो कभी बंद हुआ करते थे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा एक देश के लिए सबसे अच्छा निवेश है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक और ऐसे नेता तैयार करती है जो देश को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा के बिना कोई देश वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता। विकास को दिशा देने वाले शिक्षित दिमागों के बिना प्रगति जल्द ही फीकी पड़ जाएगी।
Yes, Sir Firozi, in every corner of India, millions of tiny dreams open their eyes, ready to learn, ready to soar. And today we celebrate those dreams, those classrooms, and the power of knowledge itself. Today, our section beams on a day that celebrates the soul of a nation, November 11th, National Education Day. A tribute to the visionary Maulana Abul Kalam Azad, India's very first education minister, whose dream still fuels our classrooms and kindles young minds across the country.
और अभिषेक, एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए ना खर्च करने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही सपना देखा था और सरकार इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस सपने को साकार करने के लिए 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A के माध्यम से शिक्षा को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य स्कूली शिक्षा का प्रावधान करता है। और फिर 29 जुलाई 2020 को आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सके।
Yes, so Sarfrozi and you listeners, hold tight as we zoom through the game-changing education missions shaping India. First up, we have the PM Shri School Scheme, approved on September 7, 2022. This is a massive leap forward. About 14,500 schools across India have been upgraded in the true spirit of NEP 2020. With an investment of 27,360 crore rupees, including a central share of 18,128 crore rupees, between 2022 and 2027, as schools are getting a complete makeover like never before.
और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया और मार्च 2026 तक चलने वाला समग्र शिक्षा अभियान समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है, जो हर बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो। इसके बाद जनवरी फरवरी 2024 से शुरू होने वाली एक नई पहल प्रेरणा है। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं के चुनिंदा विद्यार्थियों, यानी हर हफ्ते सिर्फ 20 विद्यार्थियों को गुजरात के वडनगर के एक स्कूल में आवासीय कार्यक्रम में रहने का मौका मिलता है। ये कार्यक्रम भारत की समृद्ध विरासत को आधुनिक उच्च तकनीक वाली शिक्षा के साथ अनोखे ढंग से जोड़ता है।
Yes, and for adults who missed out on formal schooling, we have the Ullas NILP running from 2022 to 2027. And this initiative helps the 15 plus population gain literacy skills and join the fold of empowered citizens. Kids, pay attention. Here comes Nipun Bharat, launched on July 5th, 2021. This mission ensures that by the end of grade 3, every child achieves foundational literacy and numeracy, with the aim of reaching this milestone nationwide by 2026-27. And starting school should be a joyful leap, not a stumble. That's where Vidya Pravesh comes in. Introduced on July 29, 2021, this play-based school prep module helps children transition smoothly into grade 1.
और एक ऐसा ही कार्यक्रम है विद्यांजलि, जिसे 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। ये एक स्कूल स्वयंसेवी कार्यक्रम है जो समुदायों और निजी क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से विकास में शामिल करता है। सितंबर 2017 से चल रहे दीक्षा कार्यक्रम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है। ये प्लेटफॉर्म शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास का समर्थन करता है।
एंड स्पीकिंग ऑन टीचर्स निष्ठा, द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट स्टार्टेड इन ऑगस्ट 2019. It went digital during COVID-19 in October 2020 and has evolved into versions 2.0 and 3.0, targeting secondary teachers as well as foundational literacy and numeracy. And to encourage healthy competition among higher education institutes, there's the NIRF, the National Institutional Ranking Framework, launched on September 29, 2015. It rates our colleges and universities in a transparent way, fostering continuous improvement.
और उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एक क्रांतिकारी बदलाव है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ये योजना शीर्ष संस्थानों में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता और शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
Yes, and so to conclude our discussion, Sir Firozi,
जी.
Every chalk mark on a board, every late night study lamp, together they write India's greatest success story. From the classrooms of small villages to the labs of global innovation, India's education journey is unstoppable. On this National Education Day, we salute every teacher, every student, every dream that dares to learn and lead. So whether in classrooms or through lifelong learning, education remains the light that guides us out of darkness and into a future full of possibilities. So let us remember, a nation that learns together grows together. Yes, and on to some more news. So polling is progressing smoothly in the second and final phase of Bihar Assembly elections. Voting is taking place for 122 constituencies spread over 20 districts in this phase. And over 60% voter turnout was registered till 3 p.m. More than 3 crore 70 lakh voters will decide the fate of 1,302 candidates, including 136 women. The voting, which began at 7 a.m., will conclude at 6 in the evening, except for 7 constituencies, where it will end at 5 p.m. for security reasons. And the Election Commission has made elaborate arrangements for conducting smooth polling.
और अब अधिक जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं अपने संवाददाता दीपेंद्र से, जो बिहार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। दीपेंद्र, आप इस समय बिहार के नवादा जिले में हैं और मतदान समाप्त होने में बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, तो इस दौरान आपको मतदाताओं के बीच कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? साथ ही हमारे श्रोताओं को यह भी बताएं कि नवादा जिले में कौन कौन से मुख्य उम्मीदवार हैं जो इस आज चुनावी मैदान में हैं।
सर फरोज जी, देखिए नवादा जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों हिसुआ, नवादा, रजौली, गोविंदपुर और वारिसलीगंज में मतदान चल रहा है। इस जिले में कुल 17 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए हैं। पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान को देखते हुए इस बार नवादा जिले के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में जो 50% मतदान का आंकड़ा हुआ था वो उसको पीछे छोड़ दिया है। नवादा जिले की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 53% से अधिक मतदान हो चुका है। इस बार चुनाव में महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और ज्यादातर मतदान केंद्रों पर जहां हमने दौरा किया वहां पुरुषों से अधिक जो है महिलाओं की भीड़ थी।
जी।
चुनाव आयोग के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते विशेष इंतजाम किए हुए थे। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और कंट्रोल रूम से जो है पूरी मतदान प्रक्रिया पर जो है नजर रखी जा रही है। और आपको बताऊं कि नवादा, हिसुआ और वारिसलीगंज में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि सुरक्षा कारणों की वजह से यहां 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, रजौली और गोविंदपुर, जहां मतदान जो है शाम 5 बजे तक चलेगा। जहां तक आपने बात की प्रत्याशियों की, तो यहां मुख्य मुकाबला जो है एनडीए और महागठबंधन के बीच है। देखिये नवादा विधानसभा में प्रत्याशियों के दल तो बदल गए हैं लेकिन चेहरे जो है वही पुराने हैं। जहां तक नवादा की बात करूं तो जेडीयू ने मौजूदा विधायक जो विभा देवी हैं उनको टिकट दिया है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट से चुनाव जीती थी। वहीं महागठबंधन की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व विधायक हैं कौशल यादव, उनको टिकट दिया है। और इस सीट पर जन सुराज पार्टी के अनु सिंह मैदान में है, जिसके कारण जो ये मुकाबला है काफी रोचक हो चुका है। अगर हम एक और विधानसभा की बात करें गोविंदपुर की, तो एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से विनीता मेहता चुनाव मैदान में है, जबकि महागठबंधन की ओर से पूर्व जदयू विधायक पूर्णिमा देवी को टिकट मिला है। वहीं आरजेडी के जो इस वक्त 2020 के जो वर्तमान विधायक थे मोहम्मद कामरान, उनको टिकट नहीं मिला, जिस कारण से वो निर्दलीय मैदान में है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा आपको सर फिरोजी, कि नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दनिया बूथ है जहां पर 10 साल के बाद जो है फिर से मतदान वहां पर इस समय चल रहा है, क्योंकि इस बूथ पर काफी दिनों से वोटिंग नहीं हो रही थी। तो वहां के लोग नाराज थे क्योंकि जहां पर वोटिंग होती थी वहां उनके गांव से थोड़ी दूर में था, क्योंकि वहां करीब 800 लोग जो है मतदाता वहां पर हैं। लेकिन इस बार जो है दनिया बूथ के चालू होने से वहां के लोग काफी खुश हैं और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं।
जी सर फरोजी, दीपेंद्र बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
यस सर फरोजी, एंड वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी फ्रॉम दिल्ली, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्री ठाकुर टुडे एम्फसाइज दैट इट इज द पीपल्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ट्राइबल ट्रेडिशंस रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम। Addressing the National Tribal Literacy Festival 2025 in New Delhi, the minister said the tribes of India have a rich and varied history, which can be transformed into stories for children to learn and cherish tribal culture and heritage. And she called for the greater promotion and providing safe spaces to protect them from imposition by more popular languages like English.
अब आदिवासी भाषाओं में जहाँ स्थानीय भाषाओं कुछ परंपराओं में पुस्तकें लिखी जा रही है, उससे आने वाली पीढ़ी को हमेशा याद रहेगा कि नहीं हमारे पहले पूर्वज थे, ये थे, हम ऐसे करते थे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये संरक्षित रहेगी, नहीं तो ये खत्म होती जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही है कि हमेशा कोई भी परंपरा हो बनी रहे, आगे संरक्षित रहे, इसी को लेकर 2 दिन का ये वर्ग साल में मंत्रालय ने करा।
The National Tribal Literary Festival is a two-day event featuring film screenings, panel discussions, and conferences to promote tribal literature on a global platform while celebrating the diversity and richness of tribal culture. Well, moving on to Tiruchirappalli, and a scintillometer, an optical instrument that measures heat and moisture exchange between the land surface and the atmosphere, was installed at the Tamil Nadu Rice Research Institute, Aduthurai, Tanjore district very recently. We have more from a correspondent.
The scintillometer joins an existing suite of sensors at the TRRI Critical Zone Observatory, making the site one of the few in India with such comprehensive land atmosphere monitoring. The Critical Zone Observatory at TRRI, established under Tamil Nadu Agriculture University with the support from the National Center for Earth Science Studies, became fully operational in 2022. It is one of the three such observatories in India and the only one in Tamil Nadu. The site already records weather parameters, soil moisture, and direct air surface fluxes. The scintillometer now provides direct estimates of sensible heat flux, a key variable for understanding the surface energy balance. The observatory will generate long-term data sets on meteorological, canopy, and hydrological parameters for the Kaveri Delta. Continuous local measurements are crucial for managing water and crops in this climate-sensitive agriculture region. The scintillometer operates by transmitting a light beam between two fixed points. Minute rapid fluctuations in the beam caused by turbulent air, known as scintillations, are analyzed to estimate heat transfer from the land to the atmosphere. TRRI scientists say the combined data set will help refine remote sensing products and translate measurements into actionable advisories for farmers. The installation would strengthen climate resilient decision making in the Kaveri Delta. Better irrigation scheduling so as to save water and match supply to crop needs, more accurate evapotranspiration and soil moisture estimate for sharper form advisories, and stronger calibration of satellite products and improved local weather forecasts are top three benefits from the scintillometer, which will be a boost to farmers and agriculturists. Shanti Ramesh for Parikrama from Akashvani Tiruchirappalli.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं नागपुर, जहां भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संविधान एक चित्रात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी संविधान की विरासत और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को चित्रों के माध्यम से दर्शाती है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर ने संविधान एक चित्रात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह प्रदर्शनी संविधान की विरासत और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को चित्रों के माध्यम से उजागर करती है। संविधान की आत्मा को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा यह विशेष प्रदर्शनी 10 से 14 नवंबर तक केंद्र के परिसर में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य सूचना आयुक्त नागपुर खंडपीठ गजानन निमदेव एवं केंद्र की निदेशिका आस्था कार्लेकर के हाथों किया गया। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रदर्शनी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन, योगदान और संविधान निर्माण की झलक दर्शाने वाले 75 दुर्लभ छाया चित्र प्रदर्शित किए गए है। इस प्रदर्शनी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन कार्य और संविधान निर्माण की यात्रा को दर्शाने वाले छाया चित्रों में प्रमुख स्थल जैसे उनकी जन्मभूमि, निर्धार भूमि, संकल्प भूमि, क्रांति भूमि, मुक्ति भूमि, प्रेरणा भूमि, विद्या भूमि, धम्म भूमि, दीक्षा भूमि के दृश्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। सुप्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट शेखर सोनी द्वारा खींचे गए ये छायाचित्र नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ते हैं। परिक्रमा के लिए नागपुर आकाशवाणी से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और वहां की भी हलचल लेते हैं। अभिषेक,
इन अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट, द टीम सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी विक्ट्री ओवर दिल्ली, विनिंग बाय 7 विकेट्स एट द अरुण जेटली स्टेडियम। After opting to bowl first, Aqib Nabi led the charge with figures of 5 for 35, restricting Delhi to 211. Skipper Paras Dogra's century and Abdul Samad's 85 helped J&K post 310 in reply, taking a 91-run lead.
और सम्राट राणा ने कल काहिरा में ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही सम्राट राणा व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
एंड मूविंग ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस सेंसेक्स एंड द निफ्टी स्टार्टेड द सेशन विद मार्जिनल गेन्स बट सून लॉस्ट मोमेंटम एंड ट्रेडेड इन द रेड। हाउएवर द लेटर हाफ द इंडिसेस रीबाउंडेड एंड क्लोज्ड विद गेन्स टुडे। The Sensex increased 336 points or 0.4% to close at 83,871, while the Nifty advanced 121 points or 0.47% to settle at 25,695. In the forex market, the rupee today appreciated by 13 paise to trade at 88.56 rupees against the US dollar a short while ago.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है।
November 11th is the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Born in Mecca in 1888, Abul Kalam Azad received a traditional Islamic education at home in Calcutta from his father and other teachers. Maulana was well versed in many languages like Arabic, English, Urdu, Hindi, Persian and Bengali. He was a renowned scholar and a poet. He adopted the pen name Azad as a mark of his mental emancipation from a narrow view of religion and life.
He was drawn to journalism and politics from a young age. Two leading revolutionaries of Bengal, Arabindo Ghosh and Sri Shyam Sundar Chakravarti, inspired Maulana Azad. He joined the revolutionary movement against the British rule. Within 2 years, Maulana Abul Kalam Azad helped set up secret revolutionary centers all over North India and Bombay.
In 1912, Maulana Azad started a weekly journal in Urdu called Al Hilal. The government banned Al Hilal in 1914. Maulana Abul Kalam Azad then started another weekly called Al Balagh, with the same mission of propagating Indian nationalism and Hindu-Muslim unity. In 1916, the government banned this paper too and expelled Maulana Abul Kalam Azad from Calcutta.
Maulana Azad met Gandhiji during Khilafat agitation. Influenced by Mahatma Gandhi and his ideals, he joined Congress in 1920. Azad became the youngest person to serve as the president of the Indian National Congress at the age of 35 in 1923.
He was imprisoned several times between 1920 and 1945, including for his participation in the civil disobedience movement and the Quit India movement. Maulana Azad tirelessly advocated for a single India that would embrace both Hindus and Muslims while strongly opposing the partition.
Maulana Azad took an active part in the Constituent Assembly debates, particularly those related to education. He believed that India as a nation should aspire for high educational standards. As the first education minister of the country from 1947 until his death in 1958, he advocated for free and compulsory primary education for all children up to the age of 14, as he believed it was the right of all the citizens.
He established the Board for Adult Education to facilitate education among uneducated adults. He was also one of the brains behind the University Grants Commission, UGC, and played a key role in the establishment of other educational institutions like the Indian Institute of Science and various IITs.
He breathed his last on 22nd of February 1958. His autobiography, India Wins Freedom, was published after his death in 1959. Azad was awarded the Bharat Ratna posthumously in 1992. It is because of his contributions in the field of education that 11th of November is celebrated as National Education Day.
11th November is also the birth anniversary of Acharya J.B. Kriplani, a Gandhian socialist, environmentalist and independence activist. Jivatram Bhagwan Das Kriplani, popularly known as Acharya Kriplani, was born in 1888. From 1912 to 1927, he taught at various places before becoming wholly involved in India's freedom movement.
He met Gandhiji during the Champaran Satyagraha in 1917. He earned the title Acharya around 1922 when he was teaching at the Gujarat Vidyapeeth, which was founded by the Mahatma a couple of years before.
आज ही जयंती है भारतीय श्रमिक आंदोलन की प्रथम महिला नेता अनुसुईया साराभाई की. अहमदाबाद की प्रतिष्ठित साराभाई परिवार में जन्मी अनुसुईया बेन भारत की प्रथम महिला ट्रेड यूनियन नेता थी. लंदन से शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद 1918 में इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की. भारतीय श्रमिक आंदोलन में अनुसुईया साराभाई का योगदान सदैव अमर रहेगा.
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky was born on this day in 1821. He was a Russian novelist, short story writer, essayist and journalist. He is regarded as one of the greatest novelists in both Russian and world literature, and many of his works are considered highly influential masterpieces. Dostoevsky's literary works explore the human condition in the troubled political, social and spiritual atmospheres of the 19th century Russia and engage with a variety of philosophical and religious themes. His most acclaimed novels include Crime and Punishment, 1866, The Idiot, 1869, Demons, 1872, The Adolescent, 1875, and The Brothers Karamazov, 1880. His Notes from Underground, a novella published in 1864, is considered one of the first works of existentialist literature.
आज हम याद कर रहे हैं हिंदी और बांग्ला सिनेमा की शाश्वत नायिका माला सिन्हा को भी. आज के दिन 1936 में कोलकाता में जन्मी माला सिन्हा ने 6 दशकों तक हिंदी, बांग्ला और नेपाली भाषा में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. प्यासा, गुमराह, हिमालय की गोद में तथा आंखें जैसी कालजयी फिल्मों में उनके अभिनय ने भारतीय सिनेमा को नई गरिमा प्रदान की. श्रोताओं, आपको माला सिन्हा की एक फिल्म का डायलॉग भी हम सुना रहे हैं.
जब हम किसी चीज की तलाश में रहते हैं तो वो चीज कभी हाथ नहीं आती, मगर एक दिन जब हम उसकी यात्रा को दिल से भुला देते हैं तो वही चीज अचानक आंखों के सामने आ धमकती है.
Yes, and Boni Kapoor was born on this day in 1953. He's an Indian film producer, primarily associated with the Hindi cinema, in addition to Tamil and Telugu cinema. And the most famous film produced by him remains the Shekhar Kapoor-directed sci-fi film Mr. India, starring his brother Anil Kapoor and his future wife Sridevi. It was the second biggest hit of 1987 and remains a cult classic in India. And the film was known for several of his lines and songs, including Sridevi's Miss Hawa Hawaii performance and Amrish Puri's quote, Mogambo Khushwa.
Mogambo Khushwa. Mogambo Khushwa.
रेगिस्तान की आवाज को विश्व मंच तक पहुंचाने वाले कवि योद्धा कन्हैया लाल सेठिया की भी आज पुण्यतिथि है. इनकी रचनाएं आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा हैं. इनकी कृति धरती धोरारी आज भी यूनेस्को की 100 महान कृतियों की सूची में चमकती है. साथ ही इन्होंने हल्दीघाटी जैसा महाकाव्य भी रचा है. कन्हैया लाल सेठिया को पद्मश्री, साहित्य अकादमी और राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जा चुका है.
Badruddin Jamaluddin Qazi was born on this day in 1926, professionally known as Johnny Walker. He was an Indian actor and comedian who acted in around 300 films. He was best known for his humorous roles in Indian films, notably been typecast as a hapless drunkard. Let's listen into a dialogue from one of his movies.
Laddu taaz rakho?
Abhi bana ke rakhe hain.
Zara chakha na? Kyun kha? Doodh ke saath khaun ya paani ke saath?
Samjha.
Baat hai kha laddu mein. एक दो किलो दे देना.
गोवर्धन भाई, भाई के लिए 2 किलो लड्डू बांध दो.
अरे वाह, क्या मावा है. ठहरो ठहरो ठहरो, ऐसा करो लड्डू कैंसिल कर दो और लड्डू के बदले 2 किलो बर्फी दे दो. अरे ठहरना ठहरना ठहरना, पेड़े तो एकदम ताजा आ गए, आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी. बर्फी कैंसिल करके बर्फी के बदले 2 किलो पेड़े.
आखिर क्या तमाशा है.
तमाशा कुछ नहीं, खाली बर्फी के बदले पेड़े.
Thank you. Ha.
Yes, and also Leonardo DiCaprio was born on this day in 1974. He's an American actor and film producer known for his work in biographical and period films. He's the recipient of numerous accolades.
श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की. नमस्कार.